स्थान के देव श्री श्री सीताराम लक्ष्मण जी के चरणों में दंडवत। भक्त हनुमान जी चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका स्वागत करते हैं। आज तीसरे दिन की हरि कथा में पहले दिन सत्संग का उद्देश्य हरि कथा सुनने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो शुद्ध अंतःकरण करने के लिए कितने मनुष्य प्रयास करते हैं इसके ऊपर कल चर्चा हुई। भगवद गीता के इस श्लोक के आधार पर मनुष्याणाम सहस्रेशु कचित कश्चित यतति सिद्धे, हजारों की संख्या में मानव समाज में से कुछ एक दो ही होते हैं जो सिद्धि मानव जन्म की सिद्धि को प्राप्त करने का लक्ष्य अपने जीवन का बनाते हैं। तो सत्संग में आने वाले कोई लाखों में एक आधा होता है। पहला ये बात स्थापित है कि अंतःकरण की शुद्धि करने की अभिलाषा रखने वाले इच्छा रखने वाले भी बहुत थोड़े होते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यदति सिद्धय, और ऐसे जो आध्यात्मिक के पथ के ऊपर चलने शुरू करें जो आध्यात्मिक के पथ के ऊपर चलने शुरू किया है जिन्होंने, उनमें से भी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यततां वि सिद्धानां, जो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं किसी हद तक, सिद्धानां कश्चन माम वेति तत्वतः, तत्व से मुझे उनमें से कोई एक जान सकता है। सौ में सूझता नहीं, हजार में होता नहीं, लख में लभता नहीं, करोड़ में कोई एक, ऐसे ये कहावत है कि ये रास्ता ऐसा है। ये रास्ता ऐसा है का कहने का भाव ये है कि कई जन्मों से जीव ये नदी का जैसे बहाव होता है ना, बहाव तो नीचे की तरफ जाता है, उसके अंदर तो कंकर पत्थर लकड़ी कचरा जो भी होगा वो तो बह जाएगा। तो कई जन्मों से हम प्रकृति के इस बहाव में नीचे की तरफ बह रहे हैं। भगवान की तरफ जाने का रास्ता बहाव की उल्टी सिमत में चलने के बराबर है। तो जब नदी का बहाव नीचे की तरफ है और हम ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे तो हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है और हम थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो पानी फिर हमको नीचे धकेलता है। इसलिए आवश्यकता है कि जगह जगह के ऊपर ऐसे सत्संग भवन बने हों, भगवान के सुंदर देवालय बने हो, मंदिर बने हो, वो एंकर का काम करते हैं। जैसे बाहों की अपोजिट सिमत में जाने वाले थक जाएं तो किसी चीज को पकड़ के थोड़ी देर के लिए सस्ता लेते हैं, फिर अपना सफर आगे अपनी यात्रा आगे जाएं। तो ये सत्संग भवन ऐसे सतपुरुषों के लिए हैं जो वेग जो है भौतिक, जो भौतिक प्रकृति का जो वेग है जो सबको धकेल के नीचे ले जा रहा है, उसकी उल्टी सिमत में चलने के लिए ये सहारे हैं। जैसे मरुभूमि राजस्थान में रहने वालों को इस बात का अनुभव होता है तो कहीं बहुत दूर दूर तक पानी नहीं होता है, पेड़ नहीं होते हैं, तो ऐसे स्थान में कहीं छोटा सा एक हरियाली का स्थान कभी मिल जाता है, पानी का छोटा सरोवर कहीं मिले, पेड़ मिले, तो थका हुआ आदमी कितना वहां शांति का अनुभव करता है। ठीक इस प्रकार से ये बड़े महानगर के अंदर सुबह से शाम तक इस कंक्रीट के जंगल में पत्थरों के बीच में बड़े शहर के अंदर घूमते फिरते लोग सारा दिन भटकते हुए जब मंदिर में थोड़ी देर के लिए आते हैं तो जैसे मरुभूमि के भटकते हुए उस यात्री को कोई पानी का स्थान और हरे वृक्ष की छाया मिल गई है, ये ऐसा स्थान है। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए यहां आके सुस्ता लें, थोड़ा सा अपनी शक्ति को फिर इकट्ठी कर ले और अपने यात्रा आगे की तरफ चलाना शुरू कर ले। तो तत्व रूप से भगवान को जानने वाले तत्वतः बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और कल इस बात के ऊपर विचार किया था श्रीमद् भागवत से इस श्लोक के ऊपर आज चर्चा करेंगे, दूसरे अध्याय श्रीमद् भागवत का, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का ये श्लोक है 11वां। इस श्लोक में जो तत्व है जिसको जानना चाहिए उसके विषय में जो तत्व को जानने वाले हैं, जैसे जैसे आपको हीरा लेना है तो हीरे के जानने वाले के पास जाएंगे तभी बताएगा। हीरा आपके पास परख करनी हो तो कोई कोई जो जो हीरे को जानने वाला है वही बता सकता है। तो इस प्रकार से यहां शब्द लिखा है वदंती तत्व, वदंती तत्व तत्व विद, वदंती बोल के बता रहे हैं संसार को। तत्व तत्व शब्द ये बहुत बड़ा वेद का महावाक्य है, तत् त्वम असि, तत् मतलब भगवान। तो तत् के विषय में कौन बताते हैं? तत्वविदस, जो तत्व को जानते हैं। तत्वविद, विद कहते हैं जानने को, जैसे वेद शब्द है, वेद मतलब जानना। जो तत्वविद है अथवा जो बहुत बारीकी से हीरे की पहचान रखता है, जो तत्व को जानने वाला है वो कहता है वदंती तत्वविदस, उस तत्व के बारे में जिस तत्व को बहुत कोई एक आधा जान सकता है लाखों में, उसके बारे में जो तत्व को जानने वाले वो क्या कहते हैं? तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम्, उस तत्व के विषय में जो ज्ञान है वो अद्विव्यम है, मतलब वो एक ही ज्ञान है। जब भगवान एक तो ज्ञान भी एक, और तो गुरु भी एक। शरीर अलग हो सकते हैं गुरु के, देश अलग में उसका जन्म हो सकता है, काल अलग में जन्म हो सकता है, लेकिन गुरु एक का अर्थ है कि बात तो वो एक ही रास्ते के ऊपर करेगी, भगवान के पास ले जाने की करेगा। तो इसके लिए कहते हैं भगवान एक, सत्य एक। तो उसके जानने वाले जो गुरुजन हैं वो भी गुरु एक ही होता है, शरीर कोई भी हो, किसी देश में काल में हो, लेकिन उसकी शिक्षा एक ही होती है। इसका अर्थ होता है एक ही गुरु एक ही है। तो उसकी शिक्षा क्या होती है? जो तत्व को ठीक जानता है वो तत्व की बात करेगा। तो वैसे ज्ञानी कहते हैं वो कैसा है तत्व? तब तीन शब्दों का वर्णन किया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। इन तीन शब्दों के द्वारा जो परम तत्व है उसके विषय में तत्व ज्ञाता महात्मा वर्णन करते हैं, जो एक ही है, अद्विव्य है। अद्विव्य का मतलब कोई दूसरा नहीं है, एक ही है, दो है ही नहीं। तो नाम तीन है, वस्तु एक है। अब तीन नाम क्या है इसको हम पहले समझेंगे, ब्रह्मेति। और ये बहुत ज्यादा शब्द आपको सुनने में मिलेगा, ब्रह्म, ब्रह्मलीन, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म पद, ये शब्द आपको सदा सुनने को मिलता है। तो ये ब्रह्म है क्या? ये परम तत्व जो भगवान है उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म भगवान को कहते हैं। तो दूसरा भगवान को क्या कहते हैं? दूसरा शब्द परमात्मा। ये शब्द भी आप पर्यायवाची सुनते हैं हर जगह, बाबा परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है, परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है, ये बात तो हमको सब जगह सुनने को मिलती है। और तीसरा शब्द क्या हमको सुनने का मिलता है इस विषय में? भगवान, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवद गीता के जहां भगवान बोलते हैं वहां शब्द लिखा है व्यासदेव में, श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, परमात्मा बोले नहीं लिखा है, ब्रह्म बोले नहीं लिखा है, भगवान वाच। तो ये तीन शब्दों से एक ही तत्व का वर्णन करते हैं तत्वविद, जो तत्व जानते हैं, जो तत्व को जानते हैं। अब अपन को समझेंगे ब्रह्म क्या है। ये ब्रह्म को जानने वाले हजारों में से कोई एक होता है जो सीधे रास्ते के ऊपर चलता है। ये ब्रह्म को जानने वाला हजारों में से कोई एक होता है। तो ये ब्रह्म है क्या? ब्रह्म को कहते हैं सर्वव्यापक, अव्यक्त। जो अव्यक्त का मतलब व्यक्ति शब्द तो समझते हैं ना, व्यक्ति मतलब ये व्यक्ति है, व्यक्ति है मतलब जिसको आप हाथ से पकड़ सको वो व्यक्ति हो गया। अव्यक्त का मतलब जो सर्वत्र है, जो सर्वत्र है, सब जगह है, उसको कहते हैं ब्रह्म। जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, अव्यक्त है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं, आध्यात्मिक पथ में चलने वाले जो ज्ञानी होते हैं, उनका लक्ष्य ब्रह्म साक्षात्कार होता है। ज्ञानी का लक्ष्य होता है ब्रह्म साक्षात्कार। हम ब्रह्म को जानेंगे और ब्रह्म में ही लीन हो जाएंगे। तो ब्रह्म है क्या? ब्रह्म एक प्रकाश है, एक ज्योति है। ब्रह्म क्या है? एक प्रकाश है, एक ज्योति है, सर्वत्र भगवान की सत्ता है, लेकिन है कैसी? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो ज्योति है। और आत्मा क्या है? वो भी ज्योत है, और वो ज्योति उस ज्योति के अंदर जाके मिल जाएगी। ये लक्ष्य है ज्ञानी का। अब दूसरा शब्द परमात्मा। परमात्मा के विषय में प्राय एक ही शब्द सुनने में आता है, परमात्मा कहां है? सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। सर्वत्र है ऐसे नहीं कहते परमात्मा के लिए प्राय। ब्रह्म सर्वत्र है, परमात्मा हृदय में विराजमान है। और ये किसका लक्ष्य है? योगियों का, जो ध्यान करते हैं। ध्याना अवस्थित तदगते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। तो योगी ध्यान की अवस्था में अपने हृदय में चतुर्भुज रूप में परमात्मा का दर्शन करते। तो योगी का लक्ष्य क्या है? परमात्मा का दर्शन करना। कहां दर्शन करना? अपने हृदय के अंदर करना। तो सबके हृदय में परमात्मा है। अब तीसरे शब्द को समझते हैं, भगवान। भगवान, और भगवान के विषय में आपको एक ही बात प्राय मिलेगी, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान भक्ति से मिलता है, भगवान भक्त वत्सल है। ये जो शब्द हमको मिलेंगे ऐसे मिलेंगे। तो भगवान भक्त वत्सल है, तो यहां तो दो हो गया, एक भक्त हो गया, एक भगवान हो गया, एक भक्त हो गया, एक भगवान हो गया। और भगवान अपने भक्त को अपने वत्स, वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को, वत्स वैसे अपने बच्चे को बोलते हैं। भक्त वत्सल मतलब अपने बच्चों का प्रेम से पालन पोषण करता है। तो ये तीन शब्दों को, अब भक्तों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवान के चरणार विंद में अपने जीवन को अर्पण करना चाहते हैं। एक बहुत सुंदर यहां आप लोग गाते हैं, धर्म चाहूं अर्थ चाहूं न मोक्ष पद राम चरण रति, जन्म जन्म मांगू राम चरण रति। ये भरत की प्रार्थना के शब्द हैं। भरत जी क्या कहते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ मुझे नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको पूछा तो? जन्म जन्म राम पद रति। रति शब्द जो है ये हम रोज करते हैं ना, ये आरती करते हैं ना, आरती शब्द में जो रति शब्द है ना, इसका मतलब है हमारी रति भगवान के चरणों में हो। और दीप जला के भगवान का दर्शन करते हैं और अपनी रति को भगवान के उस दर्श आंखों से भगवान को पीते पीते उसको हृदय में उतारने का प्रयास करते हैं। आरति का अर्थ, एक आर्थ का अर्थ होता है दुखी, तो भगवान दुखी नहीं है उसकी आरती हम करते हैं, हमारी रति भगवान में हो, ये आरती का अर्थ है कि हम अपनी रति को, रति शब्द जो रति है ना, ये असल में है कि अनंत प्रेम, ऐसा प्रेम जिसको रोका नहीं जा सकता है, जो वेग की तरह चलता है, उस प्रेम को रति कहते हैं। तो भगवान के चरणों में रति हो, ये भक्त की भाषा है। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा ही एक श्लोक कहा है, क्योंकि भरत जी भी भगवान विष्णु तत्व हैं। भरत जी, राम जी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, चारों चतुर्व्यूह विष्णु तत्व हैं, जीव तत्व नहीं है। और महाप्रभु चैतन्य ने यही शब्द कहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी त्वयि। धन्य मुने धन नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, न जन, ज्यादा जनता मेरे को आके प्रणाम करे और शिष्य बने, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। न सुंदरम, न संसार के भोग विलास की इच्छा है, न कवितम व जगदीश काम आए, नहीं कि लोग मुझे कहें कि बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है, बहुत बड़ा प्रवक्ता है, ये भी मुझे नहीं चाहिए। मम जन्म नहीं जन्म, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, बार बार जन्म मिले, लेकिन आपके चरणों में अहितों की भक्ति हो, ये हमारे ऊपर कृपा करना भगवान। तो भक्ति की परिभाषा ये है। ज्ञानी का लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार। योगी, ध्यान योगी का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन। भक्त का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। अब एक उदाहरण से इसको समझेंगे। सुबह सवेरे 6 बजते हैं ना, अपने कमरे में हम होते हैं तो कहते हैं दिन हो गया। कैसे पता लगता है दिन हो गया? सूर्य का प्रकाश हमारे कमरे में आ गया। तो सूर्य को प्रकाश देखने से सूर्य की पहचान होती है। सूर्य नहीं देखते हैं, सूर्य का प्रकाश देखते हैं केवल, और प्रकाश सूर्य का सर्वत्र है। तो प्रकाश किसका है? सूर्य का है। तो सूर्य के प्रकाश को ही हम सूर्य कहते हैं। प्रकाश किसका है? सूर्य का। घर में कमरे में बैठे सूर्य को नहीं देखा है, लेकिन कहते हैं दिन हो गया कि सूर्य का प्रकाश देख लिया, और प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। तो ब्रह्म ऐसा प्रकाश है जो भगवान के दिव्य श्री विग्रह से निकलता है। ये ईशो उपनिषद में भक्त वर्णन करता है कि भगवान इतना तेज आपके श्री मुख से निकल रहा है, इसको जरा हटाइए कि हम आपके मुख का दर्शन कर सके। अब सूर्य की रोशनी देखने से भी सूर्य ही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग सुबह सवेले कमरे से उठते हैं, उठ के स्नान करके एक पानी का लोटा लेकर सूर्य को अर्घ देते हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश के साथ साथ सूर्य के गोले का भी दर्शन करते हैं कि सूर्य एक थाली जैसा गोला दिखता है। तो प्रकाश कहां से आता है? उस गोले के अंदर से आ रहा है। तो सूर्य का गोला और सूर्य का प्रकाश एक है, लेकिन एक आदमी केवल प्रकाश को ही देख के सूर्य मान लेता है, और एक बाहर जाके गोले को भी देख लेता है। लेकिन हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, भगवत गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान आम अव्ययम। इस अव्यय भगवत गीता के योग का ज्ञान पहले मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया। तो इसका मतलब सूर्य का एक अधिपति देव भी है, सूर्य लोक का एक अधिपति देव है, उसका नाम विवस्वान है, और जिस विवस्वान को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, तो विवस्वान सूर्य देव है, जिसकी अपनी रथ है, जिसके ऊपर चल के वो चलाता है। तो ये सूर्य देव, सूर्य का गोला जो दिखता है, और सूर्य का प्रकाश, ये तीन एक ही चीज है। लेकिन सूर्य का प्रकाश ऐसे है जैसे ब्रह्म जो सर्वत्र है, सूर्य का जो थाली जितना गोला लगता है वो ऐसे है जैसे परमात्मा, लेकिन सूर्य देव जो विवस्वान है उसको जैसे भगवान। ये तीन प्रकाश लोकलाइज, परमात्मा इज लोकलाइज, लोकलाइज मतलब अब क्या है, एक ही सूर्य आसमान में हो, आप हजारों मटके भर के रखें तो हर एक मटके में उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। तो ऐसे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, एक लेकिन हर एक के हृदय में विराजमान है, अपने आप को दर्शाता है। अब ये तत्व तीन प्रकार से जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अब आगे भगवत गीता में एक जगह 11वें अध्याय में ये वर्णन, बहुत दिव्य वर्णन आता है। इस श्लोक को, दो तीन श्लोक है, इनको समझने से हमको ठीक ज्ञात होगा कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कैसे अनुभव किया अर्जुन ने। भगवान का विश्व रूप देखा, सर्वत्र सहस्र सूर्य, हजारों सूर्य जितना प्रकाश अर्जुन को देखने में आया। उस दिव्य रूप को अर्जुन देख के भयभीत हुआ, प्रणाम किया कि ये आपका तेज वाला रूप मैंने देख लिया, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपके विष्णु रूप का दर्शन करना चाहता हूं, आप चतुर्भुज रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप में अर्जुन के सामने प्रकट हुए। जो विश्व रूप समाप्त होता है वहां श्लोक आता है, अर्जुन इससे पहले ऐसा रूप किसी ने नहीं देखा है। फिर विष्णु रूप देखने के बाद बोलते हैं यह भी वेद से, दान से, तप से इसको देखना मुश्किल है। और फिर भगवान अपने श्याम सुंदर रूप में अर्जुन के सामने प्रकट होते हैं। तब अर्जुन कहता है सोमयम इदम, अभी जो मेरे सामने आप खड़े हैं ना, इदम सोमयम जनार्दन, अभी जो ये शीतल चंद्रमा जैसा आपका मनोहर रूप देखता हूं ना, ये बहुत सौम्य है जनार्दन। प्रकृति मेरे, मैं अपने स्वभाव में स्थित हो गया हूं इसको देखने के बाद। मैं अपनी अभी तक मैं स्वभाव मेरे में नहीं था, लेकिन अब मैं अपने स्वभाव में स्थित हो गया। तब भगवान क्या बोलते हैं, दुर्दर्शम इदम रूपम, जो अभी रूप देख रहे हो ना मेरा, तुम सामने तुम्हारे खड़ा, ये बहुत देखना मुश्किल है। देवा अभिकांक्षति, देवता भी इस रूप को जानने और देखने के लिए कांक्षति का मतलब बहुत ही इच्छुक रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का श्याम सुंदर रूप, भगवान कहते हैं, ये श्लोक पहले बोलते हैं कि इसको देखने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। अब यहां कहने का अभिप्राय यह है कि 10वें अध्याय में भगवान बोलेंगे पहले नमे विदो सुरगणः नमः ऋषयः, अर्जुन मुझे देवता नहीं जानते हैं। तो अर्जुन कहता आपको देवता नहीं जानते, हो सकता है भोग विलास में रहते हो, इंद्र बैठा है, इंद्र की सभा में शायद आप याद नहीं आते हो, तो ऋषि मुनि तो आपको जानते होंगे ना। हो भगवान कहते नमे विदो ऋषयः, ऋषि भी मुझे नहीं जानते। और फिर अर्जुन कहते फिर क्यों नहीं जानते, अहम आदि ही देवा नाम, अरे देवताओं का आदि मैं हूं, वो मुझसे प्रकट हुए तो मेरे को कैसे जानेंगे। थोड़े दिन पहले हम आ रहे थे राजस्थान में एक गांव में, तो अपने रिश्तेदारों के घर में ऐसे बैठे थे, तो उसने अपनी शादी का एल्बम दिखाया, तो उसकी छोटी बेटी 4 साल की भी खड़ी थी। सारा एल्बम देख के मैंने बच्ची को कहा इसमें तुम्हारा फोटो है नहीं, तुम्हारे को तो लेके नहीं गए थे शादी में। तो बेचारी परेशान हो गई, बोलती मां को, बोलती मेरे को क्यों नहीं ले गए थे, पिता को बोलती मुझे क्यों नहीं ले गए थे, मैं कहां थी, मैं कहां। तो अब बच्चे को क्या पता, बच्चा अपने पिता के बारे में सब कुछ जानेगा लेकिन उसकी शादी का उसको पता नहीं, क्योंकि उस वक्त तो वो था ही नहीं, उत्पत्ति उसकी बाद में हुई है। तो भगवान कहते हैं ये देवता, ये ऋषि, ये तो मुझसे प्रकट हुए हैं, तो मुझको कैसे जानेंगे, तो मुझे नहीं जानते। उनके जानना संभव नहीं है उनके लिए मुझे जानना। और भागवत में इस चीज का प्रमाण दिया है कि 8 देवताओं को मुंह में भ्रमत हुए हैं भगवान श्री कृष्ण को तत्व रूप से जानने में। ब्रह्मा 4 मुख वाला, जिसको भगवान ने हृदय में ज्ञान दिया, जो ब्रह्म लोक में रहता है, सबसे ऊंचा लोक है, वो ब्रह्मा जी अपने हंस के ऊपर सवारी करते हुए जाते हैं और नीचे देखते हैं मृदुल रेत के अंदर जमुना जी के तट पे ग्वाल बालों के संग में छोटा लाला कन्हैया बैठा है 5 साल का और सबने अपना भोजन का छीका खोला है और हाथ में भगवान ने भात लिया है, दही और भात का एक कवर लिया है, उंगलियों के बीच में अचार फंसाया हुआ है कि यहां मिर्ची है कि यहां आम का अचार है और भगवान उसको ऐसे खाने को जाते हैं तो मधुमंगल उसमें से खींच के कुछ लेता है और एक कहता मेरे लड्डू खाओ। तो ब्रह्मा जी कहता जिसका मैं वेदों की वाणी से ध्यान करता हूं उसके पास थाली भी खाने की नहीं है, देखो हाथ में खा रहा है और एक दूसरे से झपक में लटपक ले रहे, ये कैसा भगवान। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, बोला देखे भगवान की लीला को देखने का तत्व को कैसे जाने। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि ये बछड़े जो चर रहे हैं छोटे से, तो भगवान जो 5 साल तक थे ना तब तक वत्सपाल थे और फिर गोपाष्टमी के दिन उनको गौपाल करते हैं तब वो गाय चराने जाते हैं, तो गोपाष्टमी का विशेष एक उत्सव होता है वृंदावन नंदगांव में, गोपाष्टमी के बहुत सुंदर उत्सव होता है। अब ब्रह्मा जी बछड़ों को ले गए, यहां भोजन करते करते सबने देखा कन्हैया बछड़े नहीं है। अब ये बहुत बड़ी जो नेता होता है, जो लीडर होता है, जो बड़ा होता है, वो ये नहीं कहता तुम जाके करके आओ, भगवान स्वयं कहते नहीं नहीं बेटा आप भाई भैया आप लोग प्रसाद खाओ भोजन करो, मैं जाता हूं बछड़ों को लेखने के लिए। भगवान ने ग्वाल बालों को नहीं कहा तुम जाओ, स्वयं उठ के बोला आप बैठो यहां आप भोजन करो। लेकिन भोजन कैसे करेंगे, भगवान उठ गए बीच में से, अरे वो तो अष्ट दल बना के ऐसे सखा चारों ओर बैठते थे भीख में, कन्हैया बैठ रहे हर एक देख समझता था कि भगवान मेरी तरफ देख रहा है और मेरे से ही प्रसाद लेके खा रहा है, इतना प्रेम। तो भगवान देखने गए तो अरे तो बछड़े तो है नहीं। अच्छा भगवान विधि तो विधि विधि ब्रह्मा को विधि कहते हैं, चलो भाई विधि की ये इच्छा है कोई बात नहीं। भगवान लौट के आते हैं तो देखते हैं ग्वाल बाल, अरे वो भी नहीं है। भगवान मुस्कुराए राम राम बहुत अच्छा ब्रह्मा जी। अब इंजीनियर एक हो और उसको किसी दूसरे को अपना ज्यादा शिक्षा का प्रदर्शन करना हो तो वो दूसरे इंजीनियर के साथ करेगा ना। अब एक डॉक्टर के साथ सामने बोलेगा मैंने ये ब्रिज बनाई, तो डॉक्टर क्या कहता ब्रिज कैसे बनानी। तो जो जिस बिजनेस में जिस प्रोफेशन में जिस कला में जो महत्वपूर्ण होगा उसी कला में उससे बड़ा कुछ बना के दिखाओ तब वो मानेगा ना। तब भगवान ने कहा ठीक है, भगवान ने कहा ये ब्रह्मा सृष्टि करता है ना, ये तो कुंभार जैसी सृष्टि करता है, मिट्टी कहीं और से लाता है और घड़ा बना के रख देता है। एक दो शब्द होते हैं, कभी आपने सुना दो शब्द होते हैं, एक को कहते हैं उपादान कारण, एक को कहते हैं निमित्त कारण। जैसे मटका बनाने के लिए मिट्टी उपादान कारण है और कुंभार निमित्त कारण है, कुंभार बनाता है और मिट्टी अलग वस्तु है। तो ब्रह्मा जी क्या करता है, महत्तत्व भगवान विष्णु तैयार करके देता है महाविष्णु, उस महत्तत्व में से वो ब्रह्मा जी निकलता है, उसमें से सृष्टि करता है। अच्छा भगवान का ठीक है, अब ब्रह्मा जी सृष्टि तो करता है, अब मैं सृष्टि करके दिखाता हूं और मैं ऐसी सृष्टि करूंगा कि मैं अपने आप से ऐसे ही ग्वाल बाल, ऐसे ही बछड़े, ऐसे ही लकुटी, ऐसा छीका भोजन का, ऐसा ही टिफिन, सब कुछ ऐसा बना लेता हूं। अरे अब ब्रह्मा जी, अब यहां एक और पुराण में ऐसे बड़ी हास्य बात लिखी है कि ब्रह्मा जी तो ये बछड़ों को और ग्वाल बालों को कहीं रख के सोचा कि मैं वापस ब्रह्मलोक में जाऊंगा, काम तो बहुत बड़ा है उधर। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी अगर ब्रह्मलोक के गए और एक एक मिनट के लिए भी अपने आसन के ऊपर बैठे तो इस लोक का तो साल से साल गुजर जाएगा, साल में कई साल गुजर जाएंगे और तब तक मैं बैठ के घास चरता रहूं ये तो ठीक नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य है, कहते हैं दादा चो और ब्रह्मा जी के लोक में भगवान जी ब्रह्मा बन के बैठ गए और सब सेवकों को बोला एक नकली ब्रह्मा आ रहा है उसको अंदर मत आने देना। चंद्रमा मतलब भले अब ब्रह्मा जी को बोलो जाओ 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 यहां ब्रह्मा जी असली बैठा है। तो ब्रह्मा जी वापस आके देखता है, अब दिखता है ये तो ग्वाल बाल यही है, ये बछड़े यही खड़े, और अगर जाके जहां छुपा के रखा है वहां देखता है वहां ही वही पड़े, असली कौन से नकली कौन से उसको समझ में नहीं आया ब्रह्मा जी को। और इस ब्रह्मा जी के आने जाने में एक साल बीत गया, एक साल बीत गया। पांच साल की आयु में अघासुर का वध किया था, छह साल की आयु में बच्चे बालक जाके बोलते हैं कि आज बड़ा आश्चर्य हुआ। और ये पता किसको पहले लगा? बलराम जी को अचानक पता लगा। अब ये तो भागवत की लीला है, मैं उसके अंदर जाके है तो भगवान की लीलाओं में आनंद है, लेकिन बलराम जी उस दिन गए नहीं थे बच्चों के साथ बछड़े चराने। उन बलराम जी का जन्म उत्सव था, उनका अभिषेक होना था। अब एक चीज भागवत में आप देखेंगे, जहां भी कहीं सांप से कृष्ण को लीला करनी है उसमें बलराम नहीं जाएंगे। कालिय दमन में बलराम नहीं थे, अघासुर वध में भी बलराम नहीं थे कि बलराम शेष ना के उसके सामने ये सांप तो खड़े होंगे नहीं, ये तो पूछ डका भाग जाएंगे, तो भगवान लीला कैसे करेगा। तो जहां भी सांपों का वर्णन है भगवान की लीला करनी है वहां बलराम जी उस दिन छुट्टी करते हैं, क्योंकि भगवान की लीला का आनंद उस दिन विशेष होता है। अब ब्रह्मा जी वहां से चारों भक्त सर के साथ आया और भगवान के साथ प्रणाम करने लगा लोट लोट के मेरे से भूल हो गई, ये बछड़े ये ग्वाल ले लो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैंने क्या बहुत बड़ी प्रार्थना की है। भगवान ने ब्रह्मा की तरफ आंख उठा के देखा तक नहीं, प्रार्थना करके ब्रह्मा जी चले गए। एक एक देवता का, मैं कहता हूं देवताओं को भी भगवान ब्रह्मेति परमात्मे इति भगवान इति को समझना के लिए इतना कष्ट, इतना इतना जो है वो सूक्ष्म है कि इंद्र को भी समझ में नहीं आया। ये दूसरा भागवत का वर्णन है कि इंद्र बरसा करके भगवान ब्रज को डुबाने का प्रयास कर रहा है। अब तो ब्रज को डुबा ही देंगे, लेकिन भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया, सात दिवस तक अपने ग्वाल बालों की रक्षा की। इंद्र परेशान होकर नीचे आया, सुरभि गाय को लेकर भगवान का प्रणाम करने लगा। भगवान मेरे से गलती होगी, भगवान मुस्कुरा के कहते कोई बात नहीं इंद्र, तुम तो बड़ा अच्छा है। तो कोई खड़ा था ग्वाल बाल बोला, ओ उस दिन ब्रह्मा जी इतना सर रगड़ के आपको प्रार्थना कर रहे थे, आपको बात भी नहीं किया, आज इंद्र को तो बड़े प्रसन्न होकर बातें कर रहे। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी ने मुझे मेरे भक्तों से अलग कर दिया था, जो भक्तों से मुझे दूर करता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इंद्र ने जैसा भी किया सात दिन भक्तों के संग में आनंद तो लिया ना, अब रात दिन मेरे भक्त मेरे साथ खड़े थे इसलिए इंद्र ने ठीक किया। ये बहुत अच्छी लीला है, बड़ा आनंद आया मुझे इसमें। भगवान कितने ग्वाल बाल गोपियों के संग में बहुत निकट से सात दिन तक साथ रहे, तो ये बड़ा आनंद भगवान ने इसका लिया। तो ऐसे वरुण देव का भी वर्णन है आदि। तो देवताओं को भी भगवान तत्व को जानना बहुत मुश्किल है। अपने रामायण में ये बहुत बड़ा एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, भगवान राम हाय सीता करते हैं तो भोलेनाथ तो ऊपर से प्रणाम करते हैं, हे प्राणनाथ रघुनाथ। पार्वती कहते किसको प्रणाम कर रहे हैं, तो इस तरीके से चला रहे जो हाय सीता कर रहे। तो वो इतना बड़ा देव है, वो तो जानता है, लेकिन इस पूरे जगत की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये राम साक्षात पर ब्रह्म है, ये परम तत्व है, ये भगवान है। और तब आप सबने कथा सुनी है, सुनाने की जरूरत नहीं, सती पार्वती का जो सती है, अब सती है जो सीता का रूप धारण करके राम के रामचंद्र ने देखा, सती कहां, शंकर जी भोलेनाथ कहां है, तब तो शर्माने लगी कि ये तो मेरे को पहचानते हैं। तो भगवान को समझ में नहीं आता, ये बात नहीं है। तो लीला जब भगवान को करनी होती है तो भगवान की योग माया थोड़ी देर के लिए ऐसा एक ड्रामा बना देती है, ड्रामे में ऐसा एक सीन बन जाता है जो थोड़ी देर के लिए उस लीला का रसास्वादन किया जाता है। तो तत्व रूप से भगवान को जानना, इस श्लोक के बाद भगवद गीता में एक श्लोक आता है, भक्त्यास्तु अनन्य शक्य, शक्य मतलब हो सकता है, अनन्य भक्ति से ही हो सकता है। अनन्य शब्द का अर्थ है न अन्य मतलब और किसी का नहीं, केवल मेरी भक्ति। इस भक्ति को 14वें अध्याय में कहा है अविविचारेण भक्ति योगेन, अविविचारणी भक्ति योग के द्वारा। यानी जो भक्त्या माम शक्या एवं विदो अर्जुन, एवं का मतलब जब भगवान ने कहा एवं, जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना श्याम सुंदर, तेरा रथ हांक रहा हूं पार्थ सारथी, इसको केवल अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता है। इसके बाद एक लाइन आती है, ज्ञातम दृष्टम प्रवेष्टम च तत्वेन। तीन शब्द हैं, ज्ञातम यानी भक्त मुझे जानता है, जैसे ज्ञानी ब्रह्म को जानता है, दृष्टुम वो मुझे देखता है जैसे ज्ञानी परमात्मा को देखता है, प्रवेशुम तत्वेन और तत्व रूप से वो मुझ में प्रवेश करता है। प्रवेश करने का अर्थ क्या हो गया यहां, जैसे पहली तारीख को हम आए जोधपुर में तो कहा भाई जोधपुर में तो वो सार्वभौम प्रभु प्रवेश कर चुके हैं, तो प्रवेश कर चुके हैं इसका मतलब अब कहेंगे सत्संग भवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो सत्संग भवन में प्रवेश कर चुके इसका मतलब नहीं कि मैं भवन बन गया, मैं अपना अस्तित्व खो बैठा, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है पूरे जोधपुर के अंदर मैं सत्संग भवन जिस स्थान पे मुझे आना था उसको मैंने जाके देख लिया, ढूंढ लिया, उसको पा लिया। तो प्रवेश का अर्थ ये, कभी हम इसका एक उदाहरण देते हैं, अब तो राजस्थान में भगवान की मेहरबानी से पानी भी बहुत है और सब फल फूल मिलते हैं, लेकिन पहले जमाने में जिस राजस्थान में हम रहे बचपन में, फल तो हमने, हमारे लिए फल तो यही होता था समी में जो ये संगरी होती है सूप के जब पीली गिरती थी नीचे, ये हमारा काजू होता था, इसी को हम बड़ा फल समझ के खाया करते थे, यही हमारा सबसे बड़ा फल था। और ये बरसात में कहीं तरबूज हो जाता था तो हमारा तो बहुत बड़ा भाग्य खुल जाता था। तो मानो कि ऐसी स्थिति में किसी गांव के अंदर कोई बहुत बड़ा जो 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 एग्रीकल्चर का प्रोफेसर है, हाँ, वो जाके बोले कि आम के बारे में आज मैं आपको लेक्चर दूंगा, हजार एक आदमी आके इकट्ठे हो जाएं, बोले आम मई जून में होता है, पीले रंग का, बहुत मीठा होता है, इसके इतने प्रकार हैं, और ये आम की बात छोड़ दो, इतना मीठा होता है, रस भरा होता है। अच्छा, उसका लेक्चर सुन के बहुत से लोग बैठे थे हजारों, तो 800-900 से लिखा, बहुत अच्छा आम के बारे में हम जान लिया, 800-900 लोग तो उठ गए, 100 लोग बैठे रहे। बोला आप आम के विषय में जो अभी लेक्चर दे रहे थे ना, ये होता कैसे है, दिखाओ तो सही। तो वो उठा के आम को कहता, देखो ये ऐसा आम होता है। ओह बहुत अच्छा, आपने कहा था ये पेड़ में होता है, ऐसा होता है, 100 में से भी 55 बोला आम को देख लिया, 5 बैठे थे। बोला अभी आम को करोगे क्या आप? बोला अभी थोड़ी देर के बाद पानी में डाल के ठंडा करूंगा, फिर काट के इसका रस पीऊंगा और खाऊंगा। बोला पर थोड़ा चखाओ तो सही। तो उसको चखने को मिला। तो पहले लोग केवल आम को जान के चले गए, देखा नहीं, दूसरे आम को जाना और देख के चले गए, लेकिन तीसरे आम को जाना, आम को देखा और आम को चख के उसका आनंद भी लिया। तो कहते ज्ञानी भगवान को जानता है, योगी भगवान को जान के देखता है, लेकिन भगवान का रसास्वादन भक्त ही करता है केवल, और भक्त को तीनों चीजें मिल जाती, ज्ञातम दृष्टम प्रवेशम च तत्वेन, तत्व रूप से उसमें प्रवेश करता है। जैसे हम कहते हैं भगवत गीता जो है ना, भगवान की वाणी है, वाणी तो कोई भी दूर से सुन सकता है कि भगवान बोल रहे हैं मानो, लेकिन भागवत, भागवत भगवान के घर के अंदर जाके भगवान क्या करता है ये देखने को मिलता है। सुनने को तो आवाज बाहर से सुनाई देगा, लेकिन घर के अंदर जाके देखेंगे कर क्या रहे हैं भगवान। तो भागवत में भगवान के घर के अंदर प्रवेश करके भगवान के अंदर अंतरंग लीलाओं का रस आस्वादन करना है। तो ये बहुत उससे ये भगवत गीता ग्रेजुएट स्टडी है, तो भागवत पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है कि भगवान के तत्व को निकट से जानना है। बहुत बड़ा भगवान जब अर्जुन को बोलते हैं समयाते अद्य योग प्रोक्त पुरातन, अरे वो ही पुराना योग आज मैं अर्जुन तुमको दे रहा हूं। अर्जुन मानो कहेंगे मुझको दे रहे क्यों? भक्तोसी में सकाचित, क्योंकि मैं तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे भक्त हो। और फिर क्या कहते हैं, रहस्यम है तदुत्तमम, इस उत्तम रहस्य को तुम ही समझ सकते हो, तो रहस्य क्या है, कौन सा रहस्य अर्जुन को भगवान बता रहे हैं? रहस्य अर्जुन ये है कि ये त्रिलोकी जो चला रहा है ना, वो तेरे रथ को भी चला रहा है, वो ही है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। वो तो पूरी ब्रह्मांड को चलाने वाला अनंत ब्रह्मांड का जो मालिक है, अरे वो आज तेरा रथ चला रहा है, ये रहस्य है। ये किसी के समझ में नहीं आएगा कि तुम समझ सकते हो, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। और भगवत गीता में भगवान ने बार बार एक ही बात कही है, भाव मद भक्तो मेरे भक्त बनो। तस्माद योगी भव अर्जुन, ये भी कहा है। लेकिन जहां नवे अध्याय में गुह्यतम ज्ञान देते हैं, गुह्यतम जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ना, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम, तो जब गुह्यतम ज्ञान देते हैं तब कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन मुझ में लगा, मेरे भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, मेरी पूजा कर। और फिर 18वें अध्याय में फिर कहते हैं, और ये सब गुह्य ज्ञानों में से परम गुह्य तुमको दोबारा दे रहा हूं अर्जुन। और फिर कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। दो बार ये श्लोक भगवान ने कह दिया। नवे अध्याय में जहां आधा गीता होता है वहां कह दिया, और 18 अध्याय के अंत में कह दिया। तो भगवान चाहते क्या है हमसे? कि हम भगवान के भक्त बने, भगवान की अभिलाषा, भगवान के अंदर भी। ये आज का नहीं, कल के विषय चर्चा कर रखते हैं। एक शब्द है लोलुप्य। लोलुप्य कहते हैं लोभ को। लोभ का एक नाम है लालसा या लोलुप्य। लालसा या लोलुप्य, ये लालसा या लोलुप्य भगवान में है तब हमारे में है, नहीं तो हमें कहां से आता? जन्मादिया से यत का मतलब जिससे सब कुछ निकला है, जो कुछ दिख रहा है सब उसमें से निकला है। तो ये कुछ इस दुनिया में जो दिखता है उसी में से निकला है। तो भगवान का दिव्य लौलुप्य क्या है, इसका हम कल इसके ऊपर वर्णन करेंगे। भगवान को लौलुप्य क्या है? लौलुप्यम एकम, एक लौलुप्य ही इसकी कीमत है भगवत प्राप्ति की। भगवान को प्राप्त करने की जो कीमत अदा करनी पड़ेगी, जो मूल चुकाना पड़ेगा, वो लौलुप्य है। लौलुप्य का मतलब लालसा और लोभ है। एक राजा किसी प्रदेश में गया, दो चार पांच महीने वहां रह गया, दूसरे राज को जो है वो जीत लिया। तो जब वापस लौटने वाला था अपने राजधानी में, तब अपने सब रानियों को चिट्ठी लिखी कि मैं वापस आने वाला हूं इस देश में से, ये देश तो अपना हो गया, क्या चाहिए आपको लाएं? तो बड़ी रानी ने कुछ उस देश की विशेष चीज मंगाई, दूसरी रानी ने कुछ और चीज मंगाई। जो सबसे छोटी रानी थी उसने एक चिट्ठी भेजी। वो चिट्ठी जब राजा के पास आई तो राजा ने देखा एक लाल कागज है, उसके ऊपर सा शब्द लिखा हुआ है, सा। तो राजा जरा आश्चर्यचकित हुआ, कुछ मंगाया नहीं है, ये क्या बात है? तो मंत्री को बोला, ये क्या है, देखो ये चिट्ठी में लिखा क्या है, बड़ा एक उत्पटी चिट्ठी है, एक लाल लाल सा पेपर है और सा शब्द लिखा हुआ है। मंत्री ने कहा, महाराज ये तो रानी कहती है लालसा है, लाल सा है, हमें तो आपको देखने की लालसा है। जब राजा लौट के अपने देश में आया तो जिस रानी ने मानो कि चूड़ी मंगाई थी उसको चूड़ी भेजती, जिसने बिंदी मंगाई थी उसको बिंदी भेजती, जिसने कोई चीज मंगाई उसको भेजती, और स्वयं उस छोटी रानी के पास चले गए कि उसको लालसा तो राजा से मिलने की थी। तो लालसा जो शब्द है ये कीमत है भगवान को प्राप्त करने की। अपने पास 10 मिनट है, तो आज के चर्चा का विषय ये रहा। कल से कथा शुरू की थी, तत्व से भगवान को जानने वाले हजारों में कुछ एक ये होता है जो सिद्धि को प्राप्त करता है। हजार सिद्धि को प्राप्त किए में से कोई एक भगवान को तत्व रूप से जानते हैं। और भागवत से हमने इसके ऊपर ये चर्चा आज की है आपके सामने कि तत्व जो एक ही है, तीन स्टेजेस में रियलाइज किया जाता है, तीन स्तर के ऊपर तीन प्रकार के आध्यात्मिक जिज्ञासु उसको जानते हैं, ज्ञानी ब्रह्म करके जानते हैं, योगी आत्मा परमात्मा करके उसका पहचान करते हैं और भक्त भगवान करके उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भक्त भगवान करके प्राप्त करते हैं उसके अंदर परमात्मा और ब्रह्म दोनों आ ही जाते हैं क्योंकि ये इसको और ये और अंत में भगवान जो है, देखो ये तो आसान है कि भगवान सर्वत्र है, इस बात को समझना इतना मुश्किल नहीं है। या भगवान विराट रूप है, सारे देवता उसके शरीर में समाये हुए, ये कोई बड़ी बात नहीं, इसको समझना आसान है। तो नए भक्त को समझाने के लिए ये बहुत अच्छा है। इसलिए दूसरे स्कंद भागवत में विशेष रूप से दूसरे स्कंद का अध्याय शुरू यहां से होता है कि भगवान का पुरुष महापुरुष विराट रूप भगवान का वहां से शुरू करते हैं। और 15वां भगवान का 15वें अध्याय भगवत गीता का पहले कहते हैं, अरे भाई भगवान को देखना है, आपने सूर्य तो रोज देखते हो ना, सूर्य तो सबने देखा है ना, यदा आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अकिलम, अरे ये जो आदित्य सामने है ना, इस तेज मुझसे आता है, तुम इसको देखते है, ये तेज मेरा है समझ लो। तो उसको यूं ही कहे, ऐसा कोई है कहे कि मैं सूर्य को देखा नहीं है। फिर वहां से नीचे आते हैं और क्या कहते हैं, अहम वैश्वान रो भूतवा प्राणी नाम देमा, अरे आप सब लोग भोजन करते हो ना, अरे यहां से भोजन आपके गले में नीचे जब उतर जाता है भैया, इसके बाद आपका उसके ऊपर कोई अधिकार है क्या? तो फिर अंदर बैठ के उनको कौन पचाता है? बाहर तो माता जी पका के हमारे को थाली में परोस देती है, लेकिन अंदर कौन पकाता है उसको? भगवान कहते हैं अहम वैश्वान रो, मैं वैश्वान और अग्नि के रूप में बैठ के अंदर पकाता हूं। तो बाहर से देखने के बाद जरा ये तो देख लो, रोज भोजन करते हो ना, तो भोजन अंदर कौन पकाता है? पौष्टिक पदार्थ अलग करके कौन रक्त में भेज देता है? और कचरे को एक थैली में कौन इकट्ठा करता है? और जो 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 द्रव्य है उसको दूसरी थैली में कौन इकट्ठा करता है? अंदर सफाई कौन करता है? आदमी रखा हुआ है क्या अंदर? कोई किराए का आदमी रखा हुआ है? नहीं, अब भगवान कहते हैं मैं कर रहा हूं। तो ये तो सब अनुभव करना मुश्किल नहीं है। तब तीसरे इससे बोले सर्वस्याम हृदय शनिष्ठ में, सबके हृदय में बैठा हो। अब भगवान परमात्मा तक आके आपको पहुंचाते हैं, विराट रूप से बाहर से लाते हैं, सूर्य से ले आते हैं, शरीर तक लाते हैं और फिर हृदय में परमात्मा तक पहुंचाते हैं। और फिर कहते हैं परमात्मा से ऊपर भी पुरुषोत्तम है, पुरुष उत्तम है। परमात्मा इति उदाहरत है यो लोकोत्र आवश्यक विभत्य आव्य ईश्वर परमेश्वर, वो फिर परमात्मा। ये आस्ते आस्ते समझा जाता है, जैसे बच्चे को समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आध्यात्मिकता इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो तत्व रूप से भगवान को जानने के लिए आज की कथा यहां समाप्त की कि बहुत लालसा चाहिए। तो ये लालसा आई कहां से? ये लालसा भगवान में है तब हम में आई है। तो भगवान में कौन सी लालसा है इसका वर्णन कल करेंगे। आज के सत्संग विषय में किसी का कोई प्रश्न है जिसकी चर्चा हुई तो आप जिज्ञासा है तो 5 मिनट अपने पास से आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कीर्तन करेंगे, फिर ठाकुर जी राम की आरती सीताराम लक्ष्मण जी की आरती का आनंद लेंगे, रति हो उसके चरणों में इस भाव के साथ। तो कोई प्रश्न? हाँ बेटी, जब माला करते हैं लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भगवान नहीं है इसमें? तो पूर से पूछ लो फिर, भगवान कहां है आप बताओ, वहां जाके ढूंढने पूछ लो कहां है भगवान, वो तो बताओ, वहां जाके पूछ लो, वहां जाके ढूंढ के आए जी। लालसा कैसे उत्पन्न हो? जो लोभ कैसे होता है? लोभियों के संग में बैठोगे तो लोभ होगा। जो भगवान के लालसा वाले हैं, भगवान के साथ प्रेम करने वाले, उनके संग में बैठोगे तो लालसा पैदा होगी। यहां आते हैं बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मैं कहता हूं भक्ति जायते भक्त संगे, भक्ति का जन्म ही होता है भक्त के संग में, और कोई साधन है ही नहीं।